أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو ہماری اس باب میں جاری تھی کہ غیر مسلموں کے نیک اعمال کا کیا بنے گا، آیا ان کو قیامت میں کوئی اجر ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ جو کفار نیک اعمال انجام دے رہے، جسے مسلمان خود نیک اعمال کا کہہ رہے، جیسے ہاسپٹل تعمیر کرنا، جیسے غریبوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا، اور اس طرح کے مراکز جو انسانی اور فلاح بہبود کے مراکز ہیں ان کو سپورٹ کرنا، تو ان کا کیا بنے گا. یہ ہماری سلسلہ گفتگو جاری تھا اور بات یہاں تک آ پہنچی تھی کہ تین قسم کے انداز فکر آپ کے سامنے پیش کیے تھے. کہ پہلا جو فکر تھا، جسے شہید مطیری علیہ الرحمٰن نے ایک نام نہاد روشن فکری کا کہا، دوسرا نظریہ جو آپ کے سامنے بیان کیا وہ ایک خشک مقدس تھا، اور تیسرا نظریہ شہید مطیری کی نظر میں جو قرآنی نظریہ. اس کو بیان کرنے سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو نظریہ آپ کے سامنے آ گئے، کہ پہلا نظریہ یہ کہتا تھا کہ کافر بھی نیک اعمال کریں تو وہ ویسا ہی جیسے مسلمان نیک اعمال کر رہا ہے، اس کا کوئی ان کے درمیان فرق نہیں ہے، اور دوسرا نظریہ جو خشک مقدس نظریہ تھا جو کہتا تھا کافر چاہے ہاسپٹل تعمیر کریں چاہے ہاسپٹل کو گرا دیں، دونوں برابر ہیں، چاہے وہ ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں چاہے یتیم کا مال کھا لیں، دونوں برابر ہیں. وہ جو نظریہ تھا خشک مقدس کا، اس کے ذیل میں شہید مطیری ایک مرجعہ فرقے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اپنے کتاب پڑھنے والوں کو، کہ یہ نظریہ جب آگے بڑھا کہ عقیدہ ضروری ہے، عقیدہ ضروری ہے، عقیدہ ضروری ہے، تو یہ ایک طرف اتنا افراطی ہو گیا کہ ایک مرجعہ فرقہ وجود میں آ گیا تاریخ اسلام میں. تقریباً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے آس پاس یہ فرقہ وجود میں آیا، کہ مشہور اور معروف حدیث ہے امام کی کہ بادروا الی اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیہم المرجعہ، کہ جلدی جاؤ اور اپنے بچوں کو ہماری احادیثوں کی تعلیمات دے دو، ہمارے بچوں کو اپنی احادیث یاد کروا دو، قبل اس کے کہ مرجعہ فرقے کے لوگ پہلے پہنچ جائے تمہارے بچوں کے پاس. تو یہ فرقہ کیا تھا؟ یہ فرقہ بنیادی طور پہ یہ فرقہ تھا کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور اس کا عمل ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر اس کا عقیدہ ہے صحیح ہے، اصول دین اور پورے دین و ان سب پر اس کا عقیدہ بالکل صحیح ہے، تو فرق نہیں پڑتا وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، جہاد کرے نہ کریں، امر بالمعروف کرے یا نہ کریں، نہ ہی یعنی منکر کرے یا نہ کریں، خمس دے یا نہ دے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. یہ خود اسی نظریے سے وجود میں آیا جو ہمارا دوسرا نظریہ تھا خوش مقدس والا. اس سے پھر یہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ ایک مذہب کی صورت، ایک مکتب کی صورت، ایک فرقے کی صورت اختیار کر لی اس نے. اگرچہ اس میں ایک ٹیکنیکلی فرق ہے مکتب اور فرقے میں، ابھی اس فرق کی طرف نہیں جاتے. یہ جو مرجعہ فرقہ تھا یہ بنو امیہ کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن اس کے نظریات رسوخ پیدا کر گئے تشیعوں میں بھی اور عام مسلمانوں میں بھی. حتیٰ کہ مثال طور پہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بی بی آپ پردہ کریں، آپ حجاب کریں، تو وہ کہتی ہے کہ حجاب تو دل کا ہوتا ہے. اب دل میں کیسے حجاب کر سکتا ہے انسان؟ بھائی حجاب تو اپنی اسی ظاہری جسم کو چھپانا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے حجاب دل کا ہوتا ہے. یا اگر آپ کسی جوان سے کہیں کہ آپ داڑھی رکھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں دل کی داڑھی ہوتی ہے. اب دل کی کون سی داڑھی ہوتی ہے خدا جانے. تو یہ جو بات ہے نا، یہ ابھی کی نہیں، یہ بہت پرانی، یعنی 1200 سال پرانی باتیں ہیں ساری مرجعہ فرقے کی. اور اس وقت تشیعوں میں بھی یہ باتیں آنا شروع ہو گئی کہ عقیدہ ہونا چاہیے، محبت اہل بیت ہے اور یہ تو بس کافی ہے، نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اگرچہ امام نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس نظریے کا مقابلہ کیا اور اپنے اصحاب سے یہاں تک کہہ دیا کہ جاؤ اور اس فرقے کی مخالفت کرو، اپنے بچوں کو ہماری تعلیمات یاد دلاؤ، نہ کہ اس کے نظریات تمہارے بچوں تک آ جائیں، یہ خطرناک فرقہ ہے. لیکن اس کی جو وجود تھا یہ وہیں سے، اسی نظریے سے آیا. اس کے مقابل میں اسلام میں ایک اور فرقہ تھا جو خوارج کا تھا، جو اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ انجام دے دے تو وہ اسے بھی کافر مانتے تھے. ایک طرف یہ تھا جو کہتا تھا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک طرف 180 ڈگری کے فاصلے پر خوارج کا فرقہ تھا जो ये कहता था अगर तुमने एक अमल अमले गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो गए या किसी वाजिब को छोड़ दिया तुमने तो तुम काफिर हो गए, तुम्हारा खून बहा जायज़ हो गया मिसाल के तौर। ये सारी जो तफरक़ें फ़िरक़ें ग्रोहबंदियाँ मुख्तलिफ नज़रियात जो वजूद में आ रहे हैं ये उस मसले को सही समझने ना समझने की बिना पर हो रहे हैं, उस हकीकी मसले और उस मंतिकी और कुरानी नज़रिए को ना समझने की बिना पर हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी हम सबसे पहले शहीद फरमाते हैं कि काफिर को आपके सामने रोशन करें कि काफिर क्या होता है। काफिर जो जिसे कुरान ने कंडेम किया, जो जिस काफिर के मुकाबले पे आया, वो काफिर है जो लजबाज है, जो ज़िद्दी है, जो इनाद और अपने बुग्स का इजहार करता है, जो जानते बूझते मुखालिफत करता है। इसलिए कुरान में जहद का लफ्ज़ आया है, यजहदून जाहिदून, कुरान में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। यानी अरबी ज़बान में जहद का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब इंसान के मालूम होती है, उसको हकीकत मालूम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके हकीकत के ख़िलाफ़ अमल अंजाम देता है। इसीलिए आप देखते हैं कुरान मजीद ने कहा यारिफून हो कमा यारिफून अबना हो, कि ये रसूल को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। इंसान अपने बच्चे को पहचानने में कभी ख़ता नहीं करता, 1000 बच्चे भी हों तो अपना बच्चा इंसान ढूंढ के उसमें से निकाल लेता है। इस इतने दकीक तरीके से पैगंबर को पहचानते थे ये, लेकिन उसके बावजूद भी इनकार करते थे। तो कुरान ने इस काफिर को कि जो इनाद रखता है, जिसने हकीकत का इनकार किया, ये काफिर इसके आमाल हब्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसने अल्लाह के लिए काम नहीं किया। इसने अगर कोई नेक आमाल भी अंजाम दिया तो वो अपनी ज़ात के लिए अंजाम दिया और पहुंची वहीं खाक जहां का खिमार था। एक मशहूर आपके सामने एक मिसाल भी है कि अगर आप जिस शख्स के लिए इसने काम अंजाम दिया रिवायत में कि उसको वही मिल जाएगा। सही मुस्लिम से भी एक रिवायत शहीद मुतहरी ने बयान फरमाया और रसूल काफ़ी से भी कि पैगंबर ने फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह के लिए हिजरत की तो वो उसका अजर अल्लाह के पास है, और जिस शख्स ने किसी खातून के लिए किसी औरत के लिए हिजरत की, यानी वो चाहता था कि मसलन हिजरत करके फ़लाँ इलाके की खातून को पालेगा तो फिर उसके बदले में उसको खातून ही मिलेगी। उसने अल्लाह के लिए तो नहीं की कि वो अल्लाह से कोई उम्मीद रखे कयामत में। तो जिसने जिसके लिए काम किया अगर कोई नेक अमाल भी बज़ाहिर अंजाम दिया तो ठीक है, उसको दुनिया में वो उसका अजर मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में फिर उम्मीद के दरवाजे बंद है उसके लिए। तो ऐसा शख्स जो ये जो काफिर है, इसके मुकाबल में एक वो काफिर है कि जो फ़िकी तौर पर हम उसे काफिर मानते हैं, यानी वो नजिस है, वो आप उसका ज़बीह हलाल नहीं है, मिसाल के तौर पर उसके हाथ नजिस है, लेकिन वो किसी घमंड और तकब्बुर और इनाद और बुग्ज़ और कीने की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि या तो हकीकत उस तक नहीं पहुंची या जिस तरीके से हकीकत उस तक पहुंची वो सही तरीके से नहीं पहुंची। यानी जो उसके सामने इस्तदलाल पेश किए गए तौहीद के, नबूवत के, इमामत के, क़यामत के, वो इस्तदलालात इतने कमज़ोर थे कि उसके रद्द करके आगे बढ़ गया। तो ऐसा जो काफिर है, जैसे खुद शहीद मिसाल देते हैं डिकार्ट की कि जो मशहूर फ़लसफ़ी था, उसने कहा मैं अपनी ज़िंदगी का आगाज शक से शुरू करता हूँ, शक से, यानी अपने तमाम अकायद को बातिल कर देता हूँ और मंजिल शक पर आ जाता हूँ, सिफर की मंजिल पर आ जाता हूँ, और यहाँ से अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करता हूँ। जिस चीज़ की दलील मिल गई उसे कबूल करता हूँ, जिसकी दलील नहीं मिली उसे रद्द कर देता हूँ। का ऐसा शख्स काफिर नहीं है, मुमकिन है आप उसे ज़माने में कहें काफिर, लेकिन चूँकि पास इसके पास इस्तदलाल नहीं आए, या वो अफराद नहीं आए जो इससे मुलहक हुए, या अफराद आए भी तो इसके सामने कमज़ोर इस्तदलाल किए जिसकी वजह से ये नहीं माना। और ये अलग बात है कि अपनी आखिरी उम्र में इसने दीन मसीहत को कबूल किया, और मुमकिन है अगर दीन इस्लाम इसके पास अच्छे अंदाज में पेश होता तो उसे भी कबूल कर लेता। तो ये एक मिसाल के तौर पर एक मिसाल पेश की, वरना हकीकत में शहीद ये फरमाना चाहते हैं कि ऐसे कुफ्फार के जो इनाद में दुश्मनी नहीं कर रहे हैं। यह एक बहुत दकीक नज़रिया शहीद का, वो ये कि शहीद फरमाते हैं मुसलमान और काफिर के दरमियान जो तकाबुल है, जो नस्बत तकाबुल है, ना वो नकीज़ैन की है, ना वो मलिका और अदम मलिका की है, बल्कि ज़िद्दैन की है। यानी क्या मतलब? यानी ये मतलब जिस तरह मुसलमान वो है जो अपने पूरे वजूद के साथ जिसने ईमान को कबूल किया है, तो इसके मुकाबल में जो काफिर होगा वो भी वो होगा जिसने अपने पूरे अपने वजूद के साथ इस ईमान को रद्द किया है। मुसलमान के मुकाबले में वो शख्स नहीं होगा जिसने कबूल नहीं किया, ना जिसने रद्द किया है, जिसने इनकार किया है। इनकार करना उस वक्त होता है जब एक चीज पेश की जाए, उसे समझ में आ रहा है, उसके बावजूद भी इनकार कर रहा है, ये काफिर है। इसका और उसका राबता जुदा है। यहां पर एक और बहस करते हैं कि काफिर के मुकाबले में तस्लीम है। तस्लीम, तस्लीम के भी तीन मरातिब हैं। एक वो तस्लीम है जो इंसान जिस्म की तस्लीम है, एक वो तस्लीम है जो फिक्र की तस्लीम है, और एक वो तस्लीम है जो कल्ब की तस्लीम है। जिस्म कब इंसान का तस्लीम हो जाता है, मिसाल के तौर पर आप किसी को अगर बंदूक दिखाएं, पिस्टल दिखाएं और उससे कहें हाथ ऊपर कर लें, तो ऊपर कर लेगा, उसका जिस्म आपकी मर्जी से हरकत करेगा, लेकिन उसकी फिक्र आपकी मर्जी से हरकत नहीं कर रही। उसकी फिक्र उस वक्त हरकत करेगी जब उसके पास इस्तदलाल आ जाएगा। इसीलिए उलूम रियाजियात में जितने भी मसाइल हैं वो सब इस्तदलालात की बुनियाद पर हल होते हैं। ये अलग बात है कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में मैथ्स को भी रट्टे के तौर पे पढ़वाया जाता है, लेकिन दर हकीकत मैथ्स के जितने भी मसाइल हैं वो सब इस्तदलाल चाहते हैं। फिक्र जो है वो इस्तदलाल को चाहती है। कुल हाथ बुरहान हुकुम इनकुन तुम सादिकीन, कुरान भी यही कह रहा है कि दलील लाओ, बुरहान लाओ अगर तुम सच्चे हो तो। कुछ अफराद जिस्म उनका तस्लीम होता है लेकिन फिक्र तस्लीम नहीं होती। बाज़ अफराद ऐसे हैं जिसकी फिक्र भी तस्लीम होती है लेकिन कल्ब उसका तस्लीम नहीं होता। जैसे आप देखते हैं हज़रत इब्राहिम ने जब नमरूद के साथ मुनाजरा किया तो नमरूद ने कहा तुम्हारा रब कौन है, तो हज़रत इब्राहिम ने कहा रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदा और करता है और मौत देता है। तो नमरूद ने कहा ये काम तो मैं भी करता हूँ। तो हज़रत इब्राहिम ने उस वक्त कहा कि इन्नल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब, कि मेरा अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदाई का दावेदार है तो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। तो कुरान कह रहा है फबूहित अल्लज़ी कफरा, वो मबहूत होकर रह गया वो काफिर, यानी उसके पास फिक्री इस्तदलाल उसका सिफर हो चुका था, यानी वो समझ गया था ये हकीकत है। जिस तरह शैतान समझ गया था हकायक को, इस तरह ये अफराद हकायक को समझ गए थे। इनकी फिक्री इस्तदलाल के तौर पर ये समझ गए थे कि ये हज़रत इब्राहिम हक पर हैं, लेकिन उनके कल्ब ने तस्लीम नहीं किया। तीसरा मरहला होता है जब इंसान की रूह, उसका वजूद, उसका कल्ब भी हकीकत को तस्लीम कर लेता है। तो मुसलमान हकीकी वो है जो इन तीनों मरहलों में, उसका जिस्म भी तस्लीम है अल्लाह के आगे, उसकी फिक्र भी तस्लीम है, उसका कल्ब भी तस्लीम है। इसके मुकाबले में जो है वो काफिर है जिसका जिस्म भी तस्लीम नहीं है, जिसकी फिक्र भी तस्लीम नहीं है, जिसका कल्ब भी तस्लीम नहीं है, यानी जानबूझ कर वो उसके मुकाबले पर आ रहा है। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिस तक दलील नहीं पहुँची, तो शहीद फरमाते हैं कुरान ने भी ये बात की कि अगर हम वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, जिससे उसूलीन एक मतलब निकालते को बेका बिला बयान, कि जब तक बयान नहीं पहुंचेगा, जब तक परवरदिगार की हुज्जत नहीं पहुंचेगी, उस वक्त तक उस पर इकाब भी नहीं आएगा, उस वक्त तक उसको अजाब भी नहीं दिया जाएगा। तो कुरान खुद कह रहा है वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, जब तक हम रसूल को मबूस नहीं करेंगे तब तक अजाब भी नहीं देंगे। तो ये बताते हैं ऐसे अफराद जिन तक हुज्जत नहीं पहुंची, रसूल एक मिसाल है, हुज्जत बैना, जिनके पास इस्तदलाल नहीं पहुंचा, जिनकी फिक्र तक ऐसी गिजा नहीं पहुंची कि उसकी फिक्र कबूल करें, तो वो काफिर ठीक है, हम उसे दुनिया में काफिर कह रहे हैं, लेकिन वो हकीकत में उसका मामला उस काफिर से जुदा है। मज़ीद इंशाल्लाह आगे वाली गुफ्तगू में इस पर और रोशनी डाली जाएगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि।